الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گزشتہ کل پہلی مجلس میں آپ کو سنایا گیا تھا کہ جمعرات کے دن 8 ذی الحج ہے انشاءاللہ العزیز، اور وہ حج کا ہمارا پہلا دن ہوگا، اور ہم لوگ جیسی ترتیب بنے گی اس ترتیب سے انشاءاللہ ہم لوگ مینا جائیں گے. مینا کب جانا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بودھوار کے دن شام کو یا رات میں آپ لوگ تیاری کر لیجئے. حج تمتع ہے اس لیے احرام باندھ کر کے تیاری کر لینی چاہیے، سامان کم سے کم اپنے ساتھ رکھیں، روم میں غسل کر لیجئے، احرام کی دو چادر باندھ لیجئے، ہو سکے تو حرم میں جائیے، وہاں جا کر کے نماز پڑھیے دو رکعت، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے. حج کی نیت کیجئے، لبیک پڑھیے، اب ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے اچھا حج کون سا، کوالٹی حج، بہترین حج، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ قربانی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھا جائے، وہ بہترین حج ہے. اسی لیے ہم ٹارگیٹ بنا لیوے کہ کم سے کم 300 مرتبہ ہم لبیک پڑھ لیوے، کم سے کم اس کو ہم لوگ ٹارگیٹ بنا لیوے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کو کاؤنٹنگ کر کے گنتی کر کے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ لبیک ہم کو احرام باندھنے سے شروع کرنا ہے. 8 تاریخ جمعرات کا دن، 9 تاریخ عرفات کا دن، اور 10 تاریخ کو جب ہم پہلے شیطان کو پہلی کنکری ماریں گے تو لبیک پڑھنا بند ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں تک ہمارے پاس ٹائم ہے. عرفات کے اندر تو بہت ساری اور تسبیحات بھی پڑھنی ہیں. ابھی ہم لوگوں کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ بودھوار کے دن رات کو احرام باندھ کر کے جمعرات کے دن پورا دن زیادہ سے زیادہ لبیک ہم لوگ پڑھیں. جمعرات کے دن ہم لوگ انشاءاللہ مینا جائیں گے. 8 ذی الحج ہے. مینا میں جا کر کے ہم لوگ نمازوں کو وقت پر جماعت کے ساتھ اپنے اپنے ٹینٹ میں، تمبو میں ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم لوگ وہاں دینی مجلس بھی انشاءاللہ کریں گے، ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھیں گے. جمعرات جمعہ تھوڑا بہت ہم لوگ کھانے میں کنٹرول کر لے تو ہمارے لیے اچھا ہے. اسی لیے کہ وہاں پر ایک ایک معلم کے پاس 1500-2000 اتنے حاجی ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایک ایک ٹوائلٹ کے اوپر 15 آدمی، 16-17 آدمی ایسی لائن ہوتی ایک ایک ٹوائلٹ کے اوپر. اسی لیے ہم ہی کم کھائیں گے، تھوڑا کنٹرول کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. لائٹ چیز کھا لے ہوئے، फ्रूट खा ले वे, तो हमको बार बार इस्तिंजे के लिए जाना ना पड़े और हमारा टाइम खराब ना हो। कल जैसा बतलाया था कि मीना हम कम से कम सामान लेकर के जाएंगे। ये हज के 5 दिन गोल्डन टाइम है, सुनहरा वक्त है, और बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान और एग्ज़ाम भी है। इसलिए कि यहाँ रूम में हम प्राइवेट अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ एक टेंट के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ एक जगह पर रहना पड़ेगा। किसी की क्या आदत है, किसी की क्या आदत है, हमें हर जगह एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि पक्का मुसलमान वो हैं जो अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने काम से दूसरों को सलामत रखे, किसी को तकलीफ़ न पहुंचावे, वो पक्का मुसलमान है। ये हर जगह के लिए हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बात है कि हम अपनी ज़ुबान से, अपने काम से किसी को तकलीफ़ न पहुंचावे। इस्पेशली हम एहराम में हैं, इस्पेशली हम मुबारक जगह के ऊपर हैं, तो हम बहुत कोशिश करें कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुंचे, कोई ऐसा काम हम लोग न करें। मीना में इंशाल्लाह जगह अच्छी ही मिलेगी, लेकिन जगह के मसले के अंदर हम लड़ाई झगड़ा न करें। बहनों को सबको पर्दे के पीछे अलग रखेंगे, हम मर्द लोग पर्दे के इस तरफ अलग रहेंगे। सामान कम होगा, आसानी होगी इंशाल्लाह। अपनी चप्पल हम खुद हिफाजत से रखेंगे। फिर जुमा का दिन आएगा, वो अरफात का दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, हज नाम ही है अरफात में रुकने का। हमारे पूरे हज के सफ़र में 2 रुकन हैं, एक रुकन है अरफात में रुकना और दूसरा तवाफ़े ज़ियारत करना। ये हमारे हज के 2 अरकान हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम अरफात पहुंचने के बाद आराम कर लेवे जाकर जवाल तक, इसीलिए कि जवाल के बाद एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती आएगी। यहाँ 12:38 पर आजकल जवाल का वक्त हो रहा है, हो सकता है 2-3 दिन बाकी है तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो गए। हम 12 बजे तक अच्छी तरह आराम कर लेवे, वहाँ जाने के बाद पूरा आराम ले लेवे, फिर जा कर के इस्तिंजा, वुजू, जिनको चांस मिले वो 2-4 मिनट में फास्ट फास्ट गुसल कर लेवे। जैसे कि वहाँ टॉयलेट है, उसमें शावर लगे हुए हैं, तो शावर चालू करके अपने ऊपर पानी डाल देवे। टुवाल तो इस्तेमाल करना नहीं है, साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मी इतनी है कि बाहर निकलेंगे 5 मिनट में बॉडी सूख जाएगी इंशाल्लाह। अरफात के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल किया था, इसीलिए गुसल करना सुन्नत है। जिसको चांस मिल जावे वो कर लेवे, बाकी वुजू कर लेवे। जैसे ही जवाल हो जाएगा हम लोग अपने अपने टेंट के अंदर जोहर की नमाज अदा करेंगे। वहाँ मस्जिद नमीरा है, लेकिन वहाँ तक जाना बहुत हार्ड काम है इतनी भीड़ के अंदर। फिर अपने टेंट से वहाँ जाना, वहाँ से फिर टेंट के अंदर आना मुश्किल काम है, इसीलिए अपने ही टेंट में साथियों के साथ मिलकर के हम लोग जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद अरफात के ज़िक्र में, आमाल में हम लोग लग जाएंगे। پھر وقت ہوگا تب عصر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ساتھ مل جل کر کے اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ سورج ڈوبنے تک جمعہ کے دن ہم کو وہیں عرفات کے اندر رہنا ہے۔ عرفات چونکہ مکہ سٹی کے باہر ہے، اس لیے وہاں جمعہ کی نماز تو پڑھنی نہیں ہے، ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور عبادت کے اندر ہم لوگ مشغول رہیں گے۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو پھر جیسے بس ہم کو ملے گی ہم مزدلفہ جانے کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اس دن مغرب کا وقت مزدلفہ پہنچ کے ہی سمجھا جاتا ہے، سمجھو کہ جو عشاء کا ٹائم ہے وہ مغرب کا ٹائم ہے، اسی لیے سورج ڈوب جائے عرفات میں پھر بھی ہم عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے نکلے، اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور اذان دے دوں، کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے، آگے گئے، پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امامک یا بلال، بلال آج آگے جا کر کے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، غرض مزدلفہ جا کر کے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہم کو جلدی عافیت سے پہنچا دے وے، لیکن تھوڑا لیٹ ہو جائے، ڈیلے ہو جائے تو ابھی کوئی فکر نہ کرے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے جا کر مغرب کی عشاء کی نماز وہاں پڑھی ہے، کبھی رائٹ ٹائم 9:30-10 بجے بھی پہنچ گئے ہیں۔ غرض اس دن مغرب کی نماز عشاء کی نماز مزدلفہ جا کے ہی پڑھنی ہے۔ جب ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر فوراً عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، اور عشاء کے بعد ہم لوگ دعا پڑھ کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، ذکر کریں گے۔ وہ جاگنے کی رات ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہ رات۔ حالانکہ ہم عرفات سے تھک کر کے آئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کرنا ہو تو کر لیجئے، باقی یہ ہے کہ نماز، ذکر، دعا، وہاں اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اس طرح ہمیں رہنا ہے اس رات میں۔ کوشش یہ کریں گے کہ سب ساتھ رہ گئے، ہمارا گروپ چھوٹا سا ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی آگے پیچھے ہو جاوے عرفات سے مزدلفہ میں، تو کوئی ٹینشن نہ لے وے۔ اتنا ہم کو کنفرم کرنا ہے کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے۔ میدان کے چاروں طرف بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں مزدلفہ کے، عربی میں اور انگلش میں، وہ سائن بورڈ دیکھ کر ہم پرفیکٹ کر لیں گے کہ مزدلفہ آ گیا۔ مزدلفہ میں رک جائیے، جہاں کہیں ٹوائلٹ نظر آوے، وہاں وضو کے نل بھی ہے، اس کے قریب کے اندر کہیں بھی رک جائیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، ذکر کیجئے، دعا کیجئے۔ اس رات کے اندر اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو گئے اور اس کو فون کریں گے تو وہاں بہت مشکل ہے تلاش کرنا، بلکہ امپوسیبل ہے تلاش کرنا، اس لیے کہ اتنا بڑا حاجیوں کا مجمع ایک میدان کے اندر رکا ہوا ہو، سب احرام کے اندر ہو، تو ڈھونڈنا امپوسیبل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کوشش رہے کہ ساتھ رہے، لیکن ادھر ادھر ہو جاوے تو کوئی ٹینشن نہیں، بس ساتھی کو میسج کر دو کہ میں مزدلفہ الحمدللہ پہنچ گیا ہوں، सुबह मीना में मिलेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट जवाब। रात मुजदलिफा में हमें गुजारनी है, जब सुबह सादिक का वक्त होगा। सुबह सादिक आजकल यहाँ पर 4:18 थी, 16:18 आज थी, तो 2-3 दिन बाकी है, तो 2-4 मिनट का फ़र्क होगा। जैसे ही सुबह सादिक हो जावे हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे फौरन, इसीलिए कि तहज्जुद के लिए वुजू किया होगा, वो तो होगा ही इंशाल्लाह। फजर की नमाज़ पढ़ के दुआ में मशगूल हो जाइए। लोग जा रहे होंगे लेकिन हमको किसी को देखना नहीं है, हमें अपना काम करना है। बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मुजदलिफा में रात को 2-3 बजे के बाद हज़ारों लोग आपको चलते जाते नज़र आएंगे, हज़ारों, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, हमें अपने काम में लगे रहना है, हमको मुजदलिफा में रुकना है। फजर की नमाज़ अव्वल वक्त में पढ़ कर के फिर हम जिक्र में, दुआ में, तस्बीह में मशगूल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआ अरफात में कबूल हो गई, लेकिन एक दुआ डिले हुई, कबूल होने में लेट हुई, वो मुजदलिफा आके कबूल हुए। हुकूकुल इबाद जिसको कहते हैं, बंदों के हक। हम आते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबसे माफ़ी मांग के आए हैं, लेकिन इस लाइन की जो गलती है उसकी गुनाह की माफ़ी अरफात में नहीं हुई, वो मुजदलिफा में हुई है। इसीलिए फजर पढ़ के मुजदलिफा में जब हम दुआ करेंगे तो खूब दुआ करेंगे कि अल्लाह आज तक तेरे जिस बंदे को, बंदी को हमने तकलीफ़ पहुंचाई, अल्लाह हमारी इस गुनाह को माफ़ कर दीजिए। इसका ख़ास दुआ मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद की करनी है। फिर सूरज निकलने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी होगा तो हम लोग इंशाल्लाह मुजदलिफा से चलेंगे, और चल करके मीना में जुमेरात को जहां हम रुके थे वहां आ जाएंगे, और मीना आकर के हम आराम कर लेंगे। माशाल्लाह सब होशियार लोग हैं तो मीना का लोकेशन अपने दिमाग में महफूज कर ले रहे हैं। हम बड़े बड़े पिलर हैं और पिलर के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे मौलिम की तरफ से भी हमको काट दिया जाएगा कि मीना में अपना टेंट नंबर कौन सा है। किंग खालिद कुबरी के नीचे तकरीबन अपना टेंट है, और कुबरी या ओवर ब्रिज को कहते हैं, और जो है 8 नंबर का अपना मौलिम है, वहाँ जाकर पिलर नंबर भी हम याद रख लेंगे। तो फिर मुजदलिफा से मीना अपने टेंट पर पहुँचने में आसानी हो जाएगी। ये एक बड़ा इम्तिहान का टाइम होगा, अरफात से मुजदलिफा ये भी इम्तिहान है, अल्लाह उसको आसान कर दे। मुजदलिफा से फिर मीना पहुँचना ये भी एक इम्तिहान है, अल्लाह ताला वो भी आसान कर दे। और वहाँ हम अपने तौर पर भी थोड़ी हिम्मत से काम ले रहे, घबरा न जावे, डर न जावे, लाखों इंसान चल रहे हैं उसमें हम भी चलेंगे थोड़ा बहुत, और अपने टेंट के ऊपर हम लोग पहुँच जाएंगे। ये शनिवार का दिन होगा जो ज़िलहज की 10वीं तारीख होगी। हाजी के लिए ईद की नमाज़ नहीं है। हम लोग मीना पहुँच करके आराम करेंगे, सो जाएंगे। उस दिन कंकरी मारने का टाइम सूरज निकलने से शुरू हो जाता है, लेकिन उस वक्त रश होता है, बहुत रश होता है, और पिछले ज़माने में हाथ से एक्सीडेंट भी उसी टाइम पर हुए हैं ज़्यादातर। इसीलिए हम मुजदलिफा से निकलकर सीधे मीना अपने टेंट पर आ जाएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि रात भर मुजदलिफा में इबादत की, अरफात की भी थकन है, तो मीना आकर के टेंट में बहुत अच्छी नींद इंशाल्लाह आएगी। फिर टाइम पर जब नाश्ता तो होगा ही, फिर खाना खाएंगे, जहर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मशवरे से हम पूरे ग्रुप के साथ कंकरी मारने के लिए जाएंगे। शनिवार 10 तारीख को सिर्फ एक शैतान को कंकरी मारनी है, और वह है बड़ा शैतान, उसको कंकरी मारनी है। कंकरी मार करके हम लोग मक्का आने के लिए रवाना हो जाएंगे अपनी होटल के ऊपर। ये अजियाद कहलाता है ये महल्ला, और उस तरफ से जो बसें आएगी तो ये किंग पैलेस का मेन गेट सामने ही है, वो एड्रेस भी इजी है, तो यहाँ उतर करके होटल आ जाएंगे। कुर्बानी जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो आपको बता दिया जाएगा कि कुर्बानी हो गई। जैसे कुर्बानी का मैसेज आ जाएगा उसके बाद हम लोग अपने सर को मुंडवा करके एहराम खोलेंगे। अल्लाह न करे अगर कुर्बानी डिले हुई, बाज़ मरतबा कुर्बानी बहुत डिले हुई है क्योंकि लाखों कुर्बानी है, हाजियों की कुर्बानी, लोकल अरब लोगों की कुर्बानी, इसलिए कभी कुर्बानी में लेट हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद आप लोग तवाफ़ ज़ियारत अगर करना हो तो करने के लिए जा सकते हैं एहराम की हालत में। अगर कुर्बानी डिले होने का चांस हो तो, कभी ऐसा हो कि पूरा दिन कुर्बानी नहीं हुई, रात में भी देर हो गई, बाय चांस अगर ऐसा हुआ तो आप तवाफ़ ज़ियारत करने जा सकते हो। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि कुर्बानी का इंतज़ार कीजिए, सर मुंडवा करके अहराम खोल लीजिए, अहराम खोलने के बाद गुसल कीजिए, नए अच्छे कपड़े पहनिए, फिर जाके तवाफ़ ज़ियारत कीजिए। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज की सही करनी है, सफ़ा मरवा। ये हज की सही ऐसी है कि जो सिले हुए कपड़े के साथ होती है, बाकी कोई सही हज की सिए हुए कपड़े, कोई सही सफ़ा मरवा सिए हुए कपड़े के साथ हो ही नहीं सकती है, अहराम ही में हो सकती है। यही एक सफ़ा मरवा ऐसा है कि जो सिले हुए कपड़े के अंदर होता है, क्योंकि हम अहराम खोल देंगे, तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, फिर सफ़ा मरवा की सही करेंगे। फिर से मैं इतना हिस्सा आपको रिपीट करता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। जुमेरात के दिन हम लोग इंशाल्लाह मीना में रहेंगे, 8 ज़िलहज है। 9 तारीख को हम लोग अरफात में रहेंगे, जुमा के दिन, वो अरफा का दिन है। जुमा के दिन मगरिब की नमाज, ग्रुप सूरज डूब जाने के बाद हम लोग इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में पहले मगरिब और ईशा पढ़ेंगे। कंकरी जहाँ से चाहे ले सकते हैं, चाहे मुज़दलिफ़ा से लो, चाहे किसी और जगह से लो। 49 कंकरी कम से कम हर हाजी ले लेगा, और जो हाजी 13 तारीख को भी मीना में रुकना चाहते हैं वो लोग जो है 70-72 इतनी कंकरी ले ले रहे, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मुज़दलिफ़ा से लेना, किसी जगह से भी कंकरी ले सकते हैं। लेकिन 49 कंकरी, 49 कंकरी हर एक को लेनी है, और जो लोग 13 तारीख को भी रुकने की नीयत रखते हैं वो लोग 70 एक्स्ट्रा 5-10 कंकरी वो लोग ले ले रहे हैं। मुज़दलिफ़ा में मगरिब ईशा पढ़ी, रात को इबादत की, आराम किया, तहज्जुद पढ़ी, दुआ की, जब सुबह सादिक हो जाएगी हम फौरन फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर दुआ में लग जाएंगे। सनराइज़ में, सूरज निकलने में 5 मिनट बाकी होगी, हम लोग इंशाल्लाह फिर से मीना जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। मीना जाकर टेंट में आराम करेंगे। ये शनिवार का दिन है, 10 ज़िलहज है। जोहर की नमाज़ पढ़ के मशवरे से ग्रुप के साथ कंकरी मारने के लिए जाएंगे। फिर कंकरी मार करके एक बड़े शैतान की हम लोग यहाँ होटल पर आ जाएंगे। जैसे कुर्बानी का मैसेज आएगा सर मुंडवा करके अहराम खोल देंगे और फिर तवाफ़ ज़ियारत सफ़ा मरवा की सही करेंगे। ये यहाँ तक के आमाल की तरतीब हुई। अब जो हज की सही है, क्योंकि ज़्यादा साथी हज तमत्तो वाले हैं इसीलिए उनके लिए बेहतर और अफजल यही है कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही वो हज की सही करें। ये उनके लिए अफजल है, यही बेहतर है और यही उनके लिए मशवरा भी है कि वो तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही हज की सही करें। लेकिन अगर कोई आदमी पहले सही करना चाहता है तो बुधवार के दिन अहराम बांधने के बाद एक नफिल तवाफ करके फिर वो सफ़ा मरवा की सही करें हज की नियत से, तो एडवांस सही हो सकती है लेकिन अफजल नहीं है। तमत्तू करने वालों के लिए, तमत्तू करने वालों के लिए अफजल यही है कि वो तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करें। और जिस अंदाज से माहौल है मशवरा भी आपको यही देता हूँ कि अफजल तरीके पर ही अमल करो, तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही सही करो। और सही करने के बाद फिर जब हम फारिग हो जाएंगे फिर मीना जाएंगे, सोमवार मंगलवार अल्लाह चाहे बुध का दिन वहाँ रह करके शाम को मशवरे से कंकरी मारने का निज़ाम बनाएंगे। वो इंशाल्लाह आइंदा कल की मजलिस में मैं आपको सुनाऊंगा। ये हमारा 10 तारीख तक के हमारे आमाल की तरतीब हो गए। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमारे लिए तमाम आमाल अरकान को अंजाम देना आसान करना, अल्लाह ताला हज को मकबूल मबरूर बनाए, अल्लाह सुबहानहु व ताला जिनायतों से हिफाजत फरमाए। गलतियों से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। आदत बना लीजिए कि इस्तिंजे के बाद साबू की एक आदत बनी हुई है तो अहराम में ये गलती हो सकती है। तो अगर जनरली खुशबू वाला साबुन होता है उससे दोनों हाथ धो लेंगे तो एक बकरा आता है दम में, इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर ध्यान रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मिसवाक। जो आदमी मिसवाक की सुन्नत की आदत रखता है अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाता है। तो अहराम में बहुत अच्छा चांस है कि हम मिसवाक की आदत बना ले रहे, इसलिए कि टूथपेस्ट जितने भी हैं ज़्यादातर वो खुशबू वाले हैं, इसलिए वो भी अहराम में हम नहीं कर सकते। मिसवाक ले लीजिए, मिसवाक से दांतों को साफ कीजिए, इस तरह सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सुन्नत अदा करने का सवाब भी हमको मिल जाएगा और खुशबू वाली चीज़ें तो बदबू वाली चीज़ों से भी अपने आप को बचा लें। तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, इन चीज़ों को दूर करने का बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है कि अहराम में हम उससे बचे, उसकी कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा और ख़ुशियों से मालामाल फरमाए। इस हज को हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशगवार दीनी तब्दीली का ज़रिया बना दे। काबा को देखना भी सवाब है, बाहर से भी काबतुल्ला नज़र आता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं यहाँ से तो सीधे जाओ तो 3 नंबर का टॉयलेट ब्लॉक आता है, उस सहन में थोड़ा आगे जाते हैं तो बाहर से सीधा काबतुल्ला सहन से भी नज़र आता है, उसकी ज़ियारत हो सकती है। इस तरफ राइट साइड सफ़ा की तरफ जाएंगे तो अभी गेट से काबतुल्ला बाहर से भी नज़र आता है। जिनके कपड़े सिले हुए हैं अहराम नहीं है वो लोग ऊपर के फ्लोर के ऊपर जाकर काबा की ज़ियारत करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये अमल वो लोग कर सकते हैं। सिर्फ देखने के ऊपर भी अल्लाह ताला 20 रहमत अता फरमाते हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। अच्छा मौका है यहाँ रहकर हम ये सवाब कमा ले रहे हैं। अल्लाह काबतुल्लाह की रहमतों से हम सबको मालामाल फरमाए। काबतुल्लाह के बारे में एक बात बतलाऊं, कल आपको बतलाया था ये जबल अबू कुबेस के बारे में और अजियाद महल्ले के बारे में तारीख बतलाई थी। काबतुल्लाह जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था तब उसके दो दरवाजे थे, एक दरवाज़ा तो अभी जहाँ है वहाँ और दूसरा दरवाज़ा उसका बिल्कुल उसके पीछे की तरफ। इसीलिए काबा के ऊपर ध्यान से देखना, जो रुकने यमानी है उसके बाजू में पीले पीले रंग की पट्टियाँ लगी हुई है काबा के दरवाजे के, दूसरे दरवाजे के। ध्यान से देखोगे तो पूरे स्केच नज़र आएंगे, एकदम साफ नज़र आते हैं। इस वक्त जहाँ दरवाज़ा है उसके बिल्कुल पीछे दो दरवाजे थे काबतुल्लाह के, और दोनों ज़मीन के लेवल पर थे, और हतीम वाला हिस्सा काबा के अंदर था, बाहर नहीं था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया उस वक्त पर। मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में कुरैश ख़ानदान के लोगों ने फिर से काबा बनाया था, इसलिए कि काबा बहुत पुराना हो गया था। हुजूर की प्यारी जवानी थी तो कुरैश ख़ानदान के लोग काफिर थे, बुत परस्ती करते थे, लेकिन काबा की अजमत मोहब्बत उनके दिल में बहुत थी। तो उन्होंने तय कर लिया कि काबा बनाने के अंदर हलाल का ही चंदा लगाएंगे, कलेक्शन हलाल का, एक पैसा भी हराम का नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने चंदा किया, जो पैसे जमा हुए वो कम आए और काबा शरीफ को बनाने के अंदर जो खर्चा था वो ज़्यादा था। तो कुरैश ने ये फैसला किया कि काबा पूरा मत बनाओ, चूँकि पैसे हमारे पास कम है, थोड़ा हिस्सा छोड़ दो, छोटा काबा बनाओ। तो कुरैश ने जो हलाल पैसे कम मिलने की वजह से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था, वही हिस्सा हतीम कहलाता है, वो कयामत तक उम्मत के लिए रहमत बन गया। कि अभी तक तो हतीम के वाले हिस्से में जा सकते थे, अभी कॉर्डन कर दिया है। खुद हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज में आए तो माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को चाहत हुई कि काबा के अंदर नमाज पढ़े, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के उनको हतीम वाली जगह में खड़ा कर दिया कि यही नमाज़ पढ़ लो, यही काबा है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो काबा का दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा को हतीम में नमाज़ पढ़वा दी ताकि उम्मत को भी इत्मीनान रहे और उम्मत को एक तरीका मिल जाए कि जिसने हतीम में नमाज़ पढ़ी उसने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि कुरैश ने काबा छोटा बनाया लेकिन हलाल पैसे से बनाया। आज हम बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाने का प्लानिंग करवाते हैं, फिर उसका बजट पूरा करने के लिए कहीं से भी चंदा लाके बजट पूरा करते हैं। पहले हम प्लान बनाते हैं, बाद में कलेक्शन करते हैं। कुरैश ने पहले चंदा किया, बाद में कंस्ट्रक्शन किया। जितना चंदा आया इतना ही काम किया कुरैश ने। इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी लेसन है कि हलाल की पाबंदी हो। दूसरी चेंजिंग कुरैश ने ये कर डाली कि दो दरवाजे थे तो एक दरवाज़ा कर दिया, और तीसरी चेंजिंग ये कर दी कि दरवाज़ा जो ज़मीन लेवल पर था उसको ऊंचा कर दिया। ये तीन चेंजिंग कुरैश ने काबा के अंदर की। بعد کے زمانے کے اندر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گورنر بنے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب پر پھر سے پورا کعبہ بنایا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ قریش کی تعمیر کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب پر کعبہ بنے, لیکن حضور نے فرمایا کہ ابھی یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے حضور نے نہیں بنایا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا. لیکن بعد میں حجاج کے زمانے میں پھر قریش کی ترتیب پر بن گیا اور اب تک وہی قریش کے نقشے کے اوپر کعبۃ اللہ موجود ہے. 1417 ہجری میں پھر سے یہ کعبہ شریف کی پوری نئی تعمیر ہوئی, پوری نئی تعمیر. ابھی 1442 میں ہم لوگ ہیں تو 1417 میں کنگ فہد کے زمانے میں پورا کعبہ نیا بنایا گیا. اور جب کعبۃ اللہ بن گیا تو اس کا جب اوپننگ ہوا تھا تو دنیا بھر سے بڑے بڑے عالموں کو, اسلامک کنٹری کے کنگ لوگوں کو بھی یہاں دعوت دی گئی تھی اوپننگ میں, اُدگھاٹن میں. جب سب لوگ جمع ہو گئے اور اوپننگ کا ٹائم آیا تو سب سے پہلے نئے کعبہ کی جو چابی کھولنی تھی کنگ فہد نے اپنے ہاتھ سے ہمارے انڈیا کے ایک عالم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں الندوی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں دی تھی کہ حضرت آپ کھولیے. وہ دن تھا کہ ہمارے ہندوستان کی عزت کا دن تھا کہ کنگ فہد نے خود اپنے ہاتھ سے مولانا سے کعبہ کا اوپننگ کروایا تھا. یہ 1417 ہجری میں پورا کعبہ نیا بنا ہے. حتیم کی جو دیوار ہے وہ ہاف راؤنڈ ہے, آدھی گول ہے, یہ پورا حتیم نہیں ہے. کعبہ کی دیوار سے تقریباً 6 ہاتھ جتنی جگہ ہی حتیم ہے. اور جتنا اندر جانے آنے کی جگہ ہے وہ حتیم ہے, باقی جو دیوار ہے اس کو سد اسماعیل کہتے ہیں. سد میننگ دیوار, اسماعیل میننگ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو اسی دیوار والی جگہ پر ایک درخت تھا, وہاں اس کے نیچے ان کے لیے چھپر بنا دیا اور وہاں ان کو چھوڑ دیا تھا, اسی لیے اس کا نام سد اسماعیل ہے. اور بعض تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر بھی اسی جگہ کے اوپر ہے, جہاں سد اسماعیل ہے اس جگہ کے اوپر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر چھوڑا تھا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو. اللہ کعبہ کی محبت ہمارے دل میں دے گئے, طواف کرنے والوں کو اللہ 60 رحمت دیتے ہیں, نماز پڑھنے والوں کو 40 رحمت دیتے ہیں, صرف دیکھنے والوں کو 20 رحمت دیتے ہیں. اللہ پوری 120 رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بھی سوال تو یہ کہ ابھی جگہ آپ کے